بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ 14 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں بیلی راجپوتا کی ملکہ، جس کی مصنفہ ہے نمرا احمد. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 14. صفحہ نمبر 136. وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے. بدل سے تھکا تھکا سا لگا تھا، جیسے قدرے پریشان ہو. نادر شاہ نے اس سے نہیں پوچھا کہ اس کو کیا پریشانی ہے. اس کا دل اس کی پریشانی حل کرنے کو ہی نہیں چاہا تھا. تلخیاں تو اسی روز ان کے تعلق میں کھل گئی تھی جب بدر نے میم صاحب کو جانے دیا تھا. حالانکہ یہ ان کا اصول تھا کہ مقصد پہ ذاتی شناسائی کو ترجیح نہیں دی جائے گی، لیکن بدر نے عہد شکنی کی تھی. اب تو خیر سارے معاملے ہی مختلف ہو گئے تھے. چودھری منگل سنگھ قتل کیس کا کیا بنا نادر؟ چند رسمی جملوں کے بعد وہ پوچھنے لگا. پز مٹکی اور تھکان اس کے چہرے سے عیاں تھی. نادر کو لگا وہ ذہنی طور پہ تھکا ہوا ہے اور شاید بیمار بھی ہے. اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور خوبرو چہرہ قدرے کمزور دکھ رہا تھا. قاتل پکڑا گیا شوبھا سنگھ تھا، جس سے اس کا درخت پہ جھگڑا ہوا تھا. ہاں سنا تو تھا، وہ کہہ کر چپ ہو گیا. کوئی مسئلہ ہے اس سے متعلق؟ نادر کا لہجہ محتاط سا تھا اور لیا دیا بھی. نہیں، بدر نے سر جھکایا، نفی میں سر ہلایا. بھوت کا کیا قصہ تھا؟ تمہارے خیال میں یہ کون ہو سکتا ہے؟ اب اتنا وقت کہاں ہے اپنے پاس کہ گاؤں والوں کی ہوائیوں پہ ضائع کروں؟ نادر شاہ کا لہجہ روکھا سا ہو گیا، مگر وہ اپنے خیال میں اتنا گم تھا کہ دھیان نہیں دیا. معلوم نہیں کون ہے، وہ دھیمے سے بڑبڑایا. تم تو نہیں ہو، نادر شاہ نے کہا. اس نے بے یقینی سے نادر کو دیکھا. تمہیں لگتا ہے میں ایسا کام کر سکتا ہوں؟ ایسا غلط کام تو بھوت نے ابھی تک نہیں کیا. قبرے کھود کے زیادہ سے زیادہ لاشیں ہی نکال لے جائے گا یا ہڈیاں، اب یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے. اور میں ہڈیاں کیوں لے کر جاؤں گا؟ وہ سمجھا تھا نادر مذاق کر رہا ہے. وہ جو جوگی ہے نا، جو پنڈ کے اس پار رہتا ہے، سنا ہے ہڈیوں پہ عمل کر کے دیتا ہے. میں سمجھے شاید تم عمل لینے میم صاحب کے ساتھ اس کے پاس گئے تھے. نادر کا چہرہ بظاہر مذاق کرنے والا تھا، مگر اندر طنز اتنا واضح تھا کہ بدر کو اچھا نہ لگا. اچھا، مجھے تو نہیں معلوم، اس کا لہجہ خشک ہو گیا. باقی تو پورے پنڈ کو معلوم ہے. خیر، اب یہ بھی جانے سچ ہے کہ نہیں، سنا ہے تم شادی کر رہے ہو. کس سے؟ بدر کا لہجہ محتاط ہو گیا. تم شاید اپنے خاندان میں کہیں منسوب ہو. ہاں ہوں. تو شادی وہیں خاندان میں کرو گے؟ اب کے بدر کو واضح برا لگا. وہ شادی جس سے بھی کرے، یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، اور بیلی کے ہر غیرت مند مرد کی طرح اسے تھانے کچہری میں اپنا ذاتی معاملہ اچھالنا گوارا نہیں تھا. ظاہر ہے خاندان میں ہی کروں گا، وہ مایا سے اپنی جذباتی وابستگی کا اظہار کر کے اسے خود پہ مزید کوئی طنز کرنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا. اچھا، نادر کے دل کو دھکا سا لگا. گاؤں والے تو کہتے ہیں تم میم صاحب کے چکر میں ہو. مجھے تو خیر تب بھی یقین نہیں آیا تھا. نادر کا لہجہ اتنا کڑوا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا. گاؤں والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل داروغہ جی کے ٹھاکروں کی دعوتوں پہ بہت چکر لگ رہے ہیں، لیکن مجھے بھی تب یقین نہیں آیا تھا. چلتا ہوں، رب رکھا. پھر ایک لفظ کہے بغیر، یہاں تک کہ مسافیہ بھی کیے بغیر، وہ تیزی سے باہر نکل گیا. نادر نے زور سے میز کو ٹھوکر ماری. ڈاکو کی اولاد نہ ہو تو. اسے بھول گیا تھا کہ بدر کو ڈاکو اسی نے تو بنایا تھا. Thank you. जहरा ने बरामदे से देखा था वो पाए बाग में झूले के साथ खड़ा अपने कुत्ते के सर पर हाथ फेर रहा था और वो गोरी लंबी सी सुनहरे बालों वाली लड़की साथ खड़ी हंस रही थी। वो कुत्ते के बालों पे हाथ फेरते कुछ बता रहा था और वो हंसती जा रही थी। वो थके थके कदमों से चलती रसोई में आई, पीढ़ी खींची और बैठ गई। खुले दरवाजे से पाए बाग का मंजर अब भी वाजे था। चाची रोटी के लिए तवा रख रही थी, खादमाओं के होते हुए भी रोटी वो खुद ही डालती थी। कहती थी बदर उसके अलावा किसी की रोटी नहीं खा सकता। और जहरा ने सोचा मेम को तो रोटी डालनी भी नहीं आती होगी, फिर वो इसके साथ कैसे जिंदगी बसर करेगा। शायद वो दोनों का साथ तस्लीम कर चुकी थी। जी भर के देख ले जहरा उन दोनों को, चाची लकड़ियों को फूंके मारकर सुलगा रही थी। धुआं निकल निकल कर इसके ऊपर आ रहा था। ये मंजर बस चंद रोजा है तो अपनी चाची की बात लिख के रख ले, ये मैम यहाँ टिकले वाली नहीं है। जहरा यक तिक खिड़की से नजर आते मंजर को देख रही थी। अब माया झुककर कुत्ते के सर पे हाथ फेर रही थी, मगर कुत्ता एकदम गुर्राया तो वो दो कदम पीछे हटी। बदन ने कुत्ते को जंजीर से खींच कर पीछे कर लिया। जहरा के लबों पे उदास मुस्कान आ गई। तू जानती है चाची, शेरू अजनबी लोगों से बहुत देर में खुलता मिलता है। खूंखार ऐसा है कि जान ही ले डाले, मगर मुझसे ऐसे प्यार करता है जैसे मैं बदर का परतू हूँ। बस एक दफा बदर ने उसे बताया था कि ये मेरी गमजाद है, उसको दुख नहीं देना। वो दिन और आज का दिन शेरू मुझ पे नहीं गुर्राया। चाची मैं सोचती हूँ बदर ने ये बात मेम साहब के लिए क्यों नहीं बताई। इतना ना सोचा कर जहरा, बीमार पड़ जाएगी। वो रोटी को हाथ पे फैला रही थी। मैं होने दूंगी बदर को किसी और का, वो तो हो चुका किसी और का चाची। वो दुख से उन दोनों को देखे गई। अब मेरे पास वापस आ जाए तब भी मेरा होकर नहीं रहेगा। मैंने तुझे कहा था ना, तेरी जहरा भले ज्यादा हसीन हो लेकिन ये औरत तो साहिरा है, मुझे सहर करना कहाँ आता है। तू गम ना कर, ये चंद दिनों की मेहमान है, फिर चली जाएगी। लकड़ियां आग पकड़ने लगी तो चाची ने हाथ पे फैलाई रोटी गरम तवे पे डाल दी, और फिर सदियों वो उसी का सिर रहेगा, उसने दिल में कहा। फिर रुख मोड़ कर चाची को देखा, वो अब तवे से उतरती रोटी को कपड़े से दबा रही थी। किसी को जीता कैसे जाता है, अपना दिल हार कर, और दिल कैसे हारा जाता है, अपनी जात को मट्टी में मिलाकर। और अगर तब भी वो ना मिले जिसकी तमन्ना की हो तो सबर कर लिया जाता है। मेरी दी, अल्लाह किसी की रियाजत को रायगा नहीं करता। रोटी जगह जगह से सुनहरी होने लगी तो चाची ने उसे उतार दिया। जहरा गर्दन मोड़कर फिर से दोनों को देखने लगी। बदर कुत्ते को पीछे लेकर जा रहा था क्योंकि माया दूर खड़ी थी, शायद शेरू उसे देखकर बहुत ज्यादा भौंकने और गुर्राने लगा था। जहरा को याद आया, शेरू उसे देखकर कभी नहीं गुर्राया था। शेरू को जहरा की आदत थी, जाने कैसे बदर अपने इर्द गिर्द के लोगों को माया की आदत डालेगा। नादिर शाह ने बेली की एक कुटनी को बुला भेजा था। नाम तो जाने क्या था, अब तो लोग उसे छुमन ही कहते थे। रिश्तों के पैगाम इधर उधर लेकर जाती थी, लड़के लड़कियों के दरमियान खतों के तबादले कराती, जहाँ किसी ने किसी से मिलना होता वहाँ पहरा देती, तोहफे तहाइफ इधर से उधर, हर घर की फिक्र, हर मुआशिके की खबर होती थी। छुमन फौरन ही हाजिर हुई थी। हुकुम हुजूर, आज बड़े दिनों बाद हमारी याद आई, वो हाथ जोड़े बोली तो नादिर शाह ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। फजूल बातें छोड़ो, तुमसे खास काम है। हुक्म कीजिए हुजूर। तो बताओ, वो जो कुछ सोचता हुआ कुर्सी पे आगे को हुआ, ये मलिकों की धी जहरा कैसी लड़की है। छुमन ने आंखें घुमाई। पूरे गांव में इससे सुंदर लड़की कोई नहीं है। ऐसी मोहनी सूरत, सलीका शुआर और सबसे बढ़कर पाकीजा और बाकिरदार। किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर? ना जी ना, वो बड़ी पक्की लड़की है, छुमन राजदारी से बताने लगी। एक दफा मैंने कोशिश की थी, शमसुद्दीन के बेटे का खत लेकर गई थी, उसने एक जमींदार का नाम लिया, मगर ना जी, ऐसी पक्की और करारी लड़की है, ना सिर्फ खत मेरे मुंह पे दे मारा बल्कि द्रांति उठा लाई और बोली, तेरा गला काट कर अपने कुत्ते को खिला दूंगी अगर फिर कभी इधर आई तो। शमसुद्दीन के उल्लू के पट्टे बेटे को बता देना कि बदरगाजान की मंग की तरफ टेढ़ी आंख भी की ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो बस बुरका उठाकर भागी पड़ी। तो शमसुद्दीन के बेटे ने क्या कहा? अजी मलिक बदर से तो सब डरते हैं, रोब दबदबा भी तो कम नहीं है। वो तो तौबा करने लगा जब उसे इल्म हुआ कि वो बदर की मांग है, वरना गांव वाले तो इस बात से अमूमन लाइल्म ही थे ना जी। एक कुटनीस के मुंह से बदर की सताइश ने नादिर शाह के अंदर कड़वाहट घोल दी। वो नागवारी छुपाए पूछने लगा, बचपन की बात है जी, अब तो सबको इल्म हो चुका है। जहरा के माँ बाप? नूरपुर में रहते थे, दरिया के कच्चे पे घर था, वहां सैलाब आया तो सब बह गए, बस ये बच गई। सो बदर का पियो इसे घर ले आया, तब से उसको अपनी बेटी बना रखा है। अच्छा, एक और बात बताओ, वो बजाहिर सरसरी अंदाज में सफसार करने लगा, ये मेम साहब कैसी औरत है? छुमन ने बुरा सा मुंह बनाया, वो तो फीकी मेम है जी, अजीब मिजाज औरत है, राजपूतों के एक लड़के ने जो ठाकुरों का दूर पार का रिश्तेदार है उसके लिए पैगाम भेजा, साथ में सोने का हार भी था। तब की बात है जब ठाकुर शेखर जिंदा था, मैंने पैगाम ला दिया, वो किताब पढ़ रही थी, उसने खोल कर पढ़ा, अच्छा कहकर सर हिलाया और सोने का हार नौकरानी की गोद में डाल दिया और फिर से लगी पढ़ने। मैंने जवाब का पूछा तो बोली कल आना। मैं अगले रोज गई और जवाब पूछा तो मुझे अंदर ठाकुर शेखर के पास ले गई और रुका उसके सामने रखकर ऐसी मासूमियत से बोली, ये औरत कल लाई थी, पढ़कर बता दे, मेरी तो समझ में नहीं आया। हालांकि रुका अंग्रेजी में था, और फिर ना पूछो ठाकुर ने मेरा क्या हाल किया। ये बताओ, नादिर तफसील से उकता कर बोला, उसका बदर के साथ क्या चक्कर चल रहा है? अरे जी, छुमन की आंखें चमक उठी, चक्कर ही तो चल रहा है, सुबह शाम साथ साथ फिर रहे होते हैं, देख लीजिएगा, ये फिरंगी मेम उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम्हें लगता है अब बदर जहरा से शादी कर लेगा? उसने वो बात पूछी जिसके लिए उसने कुटनी को बुलवाया था। हाँ जी, जरूर कर लेगा, मगर वो तो मेम साहब से। नादिर शाह को झटका लगा, अरे ये मेमें कहाँ टिकने वाली होती हैं? आज नहीं तो कल ये यहाँ से चली जाएगी। अजी कभी तो फिरंगी दफा होंगे ना, और शादी तो आखिर में बदर जहरा से ही करेगा। वजह? उसका लहजा सर्द हो गया था। शाह साहब, उनके यहाँ शादियाँ खानदान में होती हैं और जहरा के जोड़ का और कोई उसके खानदान में नहीं है। दूसरे बदर माँ की बहुत मानता है और वो माँ को दुख नहीं देगा, शादी जहरा से ही करेगा, ना की तो जहरा कहाँ जाएगी, वो खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कौन कौन नहीं करते? जहरा की तो माँ प्यो भी नहीं है और मलकानी ठहरी औरत जात, कौन फैसला करेगा कि बदर से ना हुई तो जहरा की शादी किससे करनी है? बदर खुद फैसला करेगा, उसका बाप तो कई बरस हुए खानदानी झगड़े में कत्ल हो गया था ना, तभी तो वो विलायत से तालीम मधूरी छोड़कर आ गया था। अब वही तो है अपने खानदान का बड़ा, और बदर के होते हुए जहरा की शादी कैसे किसी और से हो सकती है? अगर बदर बीच में ना रहे और मेम से शादी कर ले तब? ऐसा नहीं होगा हुजूर, लिख लीजियो। अच्छा, एक काम करना है तुम्हें। और फिर चुमन के जाने के बाद उसके जहन में से उसी एक फिक्रे की तकरार गूंजती रही, अगर बदर ना रहे, अगर वो बीच में से निकल जाए। बीचुमन अपना बुरका संभालती खादमा के पीछे अंदर बरामदे में दाखिल हुई तो माथे पे हाथ का छज्जा बनाकर देखा कि क्या मंजर है, और मंजर में मौजूद हर शख्स उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। चारपाई पे बैठी सब्जी काटती चाची ने छुरी रख दी थी। किसी जमीन के कागजों से कुछ पड़ता बदर सफा पलटते पलटते रुक गया था। बरामदे के सुतून से टेक लगाए चिड़ियों को बाजर डालती जहरा ने गर्दन उठाकर उसे देखा था। सलाम मलकानी, कैसी हो, ठीक तो हो? वो पान चबाती बुरका पकड़े अंदर दाखिल हुई तो बदर ने एक नागवार निगाह उस पर डालकर माँ को देखा। चाची ने हैरत से शाने उचकाए कि वो लालिम थी। हाँ चुमन, कहो कैसे आना हुआ? चाची का लहजा मोहतात और रूखा सा था। चुमन जैसी बदकिदार और बदनाम औरत का उनकी हवेली में अच्छा स्वागत नामुमकिन बात थी। अरे बैठने को नहीं कहोगी? सलाम छोटे मलिक। चारपाई पे बेतकल्लुफी से बैठते निगाह बदर पर पड़ी तो झट सलाम झाड़ दिया। अच्छा ही हुआ कि वो इधर ही था। दरोगा जी ने ये भी तो ताकीद की थी कि सारी बातचीत उसके सामने होनी चाहिए। उसके बाप को मरे अरसा हो गया था, मगर गांव वाले उसे आज भी छोटा मलिक ही कहते थे। क्या काम है? माँ के बोलने से कबल वो बोल पड़ा। बहुत गर्मी पड़ रही है आज। अरे मैं तो घड़ी भर में पसीना पसीना हो गई हूँ। वो बुरका एक तरफ रखती, आंचल दुरुस्त करती, तमहीद की गर्ज से यूं बोली जैसे बरसों से मेल मुलाकात हो। वो जैसे जब्त करके रह गया। कागजात एक तरफ खिसका दिए। जहरा कदरे परेशान सी हो गई थी। अरसा पहले चुमन उसके लिए कोई रुक्का लाई थी, जाने अब क्यों आई थी। कहीं चाची और बदर उसे ही कसूरवार ना समझे। अल्लाह इज्जत रखना। कोई काम था? चाची जैसे उकता गई थी। चुमन ख्वामखा देर किए जा रही थी, कभी बुरका इधर उधर करती तो कभी पसीना पोंछती। आओ हाँ, बड़ा खास काम था। ऐ जरा पानी तो पिलाओ, कसम से बड़ी गर्मी है। जो बात करनी है जल्दी करो और अपना रास्ता पकड़ो। बदर बात काट कर सख्ती से बोला तो चुमन गड़बड़ा गई। हाँ वही, वो अपना। फिर ठहर कर जैसे अल्फाज मुश्तमा किए। साथ वाले गांव के रईस हैं, उन्होंने रिश्ता भिजवाया है। किसका रिश्ता? चाची ने हैरत से छुरी रखी। अपनी अपनी जहरा का। चाची के चेहरे के बदलते तासुरात देखकर उसकी जबान लड़खड़ा गई। बाजरे के दाने उसके हाथ से गिरे थे। चाची के तो मानो सर पे लगी तलवों पे बिछी। ना उनकी हिम्मत कैसे हुई रिश्ते की बात डालने की? जानती नहीं है तू? बताया नहीं था उनको कि चिड़ी ना मारे? जहरा तो बदर की मंग है। हाँ बताया तो था, लेकिन लेकिन क्या? बदर ठहरे हुए लहजे में बोला। लेकिन वो दरअसल हालात नामवाफिक दिखाई देने लगे तो वो बुरका दबोच कर यूं चौकन्नी हो बैठी कि अगर जो मलकानी ने छुरी खींच कर मारी तो भाग उठेगी। दरअसल गांव वाले कहते हैं कि छोटा मलिक तो अब शायद मेम साहब से, इसलिए उन्होंने रिश्ता भिजवा। और बदर की बर्दाश्त जवाब दे गई। मेज को ठोकर मारता वो खड़ा हुआ। उठो। चुमन ने परेशान सी होकर बदर को देखा। छोटे मलिक गल तो सुन लो, बड़ा अच्छा रिश्ता, मैंने कहा है ना, उठो। वो इतनी जोर से धाड़ा कि चुमन बुरका पकड़े खड़ी हो गई। उसे इल्म होता कि ऐसी बेइज्जती होगी तो नादिर शाह के 5 रुपए लेती न इधर आती। आइंदा इस हवेली का रुख करने से पहले 100 दफा सोचना, और अगर तुम फिर भी कभी जहरा के लिए अपने जैसे बदकिरदार लोगों के रिश्ते लाई तो मैं तुम्हारी बोटियां करा के अपने कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। दफा हो जाओ इधर से। वो दरवाजे की चौखट से जा लगी। मगर मलिक साहब, जवाब क्या दूं उन लोगों को? उनसे कहो हमारे ऊपर अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया कि तुम जैसे बदनाम लोगों से रिश्ता जोड़ बैठे। जा, दफा हो जा। वो गुस्से से खौलता उसे जाते देखता रहा। जहरा की निगाहें उसी पे जमी थी। उसने इनकार तो कर दिया था, लेकिन इस बाइस के रिश्ता एक घुटनी के तवस्सु से आया था और बात लाज की थी। खुदा मालूम अपने जैसों का रिश्ता ही लाई होगी, बदर ने तो पूछने का मौका ही नहीं दिया था कि किसका रिश्ता था, लेकिन उसने एक दफा भी ये नहीं कहा था कि वो उसकी मंगेतर है। जहरा के अंदर कुछ जोर से टूटा था, वो बिलाखिर इस रिश्ते को भुला चुका था। वो खामोशी से सर झुकाए अंदर चली गई। चाची ने अफसरदगी से उसे देखा। अब तो गांव के लोग भी कहने लगे हैं कि तू मेम साहब बाढ़ में गए लोग, आइंदा इस औरत को अंदर दाखिल होने दिया तो अच्छा नहीं होगा, शरीफों का घर है ये। रह गई जहरा तो भले मेरी उसकी शादी हो या ना हो, इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि किसी बोझ की तरह उसे सर से उतार दूं, ऐसे लोगों का रिश्ता कबूल कर लूं। खौलता बड़बड़ाता वो बाहर निकल गया। चाची तासुब से सर झुकाए सब्जी काटने लगी। वो कहता है इतना बुरा वेला नहीं आया हम पे कि बदनाम बदकिरदार लोगों में रिश्ता कर बैठे, जमाना छू छू करेगा हम पे, बेइज्जत करके निकाल दिया जी। तौबा तौबा। छुमन नादिर शाह के दफ्तर में कुर्सी पे आलती पालती मारे बैठी पान चबाते हुए आदत से मजबूर बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी। तूने बताया कि किसका रिश्ता है? अरे नहीं जी, उन्होंने मौका ही नहीं दिया। ठीक है, रिश्ते का तो मामला था ही नहीं, असल बात तो मलिक बदर का मेम साहब के नाम पे भड़कना सुनना था, तूने अच्छा काम किया। और उसके जाने के बाद सारी बातें नादिशाह के जहन में फिर से गूंजने लगी। बद किरदार, बदनाम लोग। वो एक फैसला करके खड़ा हुआ। अब ये तो वक्त बताएगा मलिक बदर गाजान के बदनाम कौन होता है और जमाना किस पे थूकता है। फिर बाहर आकर एक अहलकार को बुलाया। छोटे मलिक की जमीनों पर जाओ, कमदार को ढूंढो और उसे कहो कि छोटे मलिक को बोले नादिरशाह रात को नहर पे तुम्हारा इंतजार करेगा, जल्दी आ जाना, जरूरी काम है। खुद ये पैगाम उसे ना देना, कमदार के हाथ या किसी दूसरे मुलाजिम मजारे के हाथ कहलवाना, समझ गए? उसका जहन एक नई सोच के ताने बाने बुन रहा था। जिस वक्त उसे पैगाम मिला वो काम से गांव से बाहर जा रहा था। सुनकर सोचा क्या काम हो सकता है नादिरशाह को जो उसे यूं बुलवाया है। उसे आखिरी मुलाकात में नादिरशाह का बदला लबो लहजा याद था, लेकिन फिर ये सोचकर नजरअंदाज कर गया कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो, वो शर्मिंदा हो और ताल्लुकात में आई सर्दमहरी खत्म करना चाहता हो। ठीक है, चला जाऊंगा। गांव की हुदूद खत्म होते ही घना जंगल था जिसके बीच से सड़क गुजरती थी। वो जंगल भी बेली का ही था। उस सड़क पे कदरे आगे उसने कई रोज गुजरे माया की बग्घी को रोका था। घोड़ा सटपट दौड़ाते उसे वो वाकया याद आ गया तो लबों पे आप ही आप मुस्कुराहट बिखर गई। वो अनजान फिरंगी लड़की अब उसके दिलोजान का हिस्सा बनती जा रही थी। उसे याद आया दो रोज गुजर गए वो उसे नहीं मिला। उसने वजह याद करने की सही की तो माया की आवाज समाज में गूंजने लगी। वो सर झटक कर रह गया, घोड़ा आहिस्ता कर दिया। इतना उसे सोचने लगा था कि उसकी आवाज जंगल में भी सुनाई देती थी और यकदम उसने घोड़ा रोक दिया। वो वहम नहीं था, उसे हकीकतन माया की आवाज जंगल के दरख्तों से टकराती सुनाई दे रही थी। जोर जोर से मारी गई तीन चीखें। वो चिल्ला रही थी और वो जस्ट लगाकर घोड़े से उतरा और आवाज की सिमत का अंदाजा करके उस तरफ दौड़ा। सड़क के करीब ही चंद दरख्तों के दरमियान उसे वो नजर आई। वो शाखें हटाता पत्तों पे पांव रखता उसकी तरफ लपका और सामने का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। वो दरख्त से लगी थी और एक आदमी उस पे झुका था। माया की गर्दन उसके हाथ में थी और वो अंग्रेजी में मुगल्लिजात बके जा रहा था। छोड़ो मुझे, मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। उसकी गर्दन दबोचे हुए एक झटका दिया तो वो जोर से चीखी आह। फिर निगाह उस शख्स के कंधे पर से होती हुई पीछे खड़े बदर पे पड़ी। बदर, बदर मुझे बचाओ, वो चिल्लाई तो घबरा के उस आदमी ने उसकी गर्दन छोड़ी और पलट कर देखा। वो जॉन कार्लिस था। वो दोनों हाथों से उसे धकेलती भाग के बदर के पीछे आ खड़ी हुई और जैसे खौफजदा होकर सख्ती से उसका बाजू पकड़ लिया। डीसी बहादुर, मेरी बात कान खोल कर सुनो, वो अपने गुस्से पे काबू पाता उंगली उठाकर बोला, अगर आइंदा तुमने इस औरत की तरफ नजर भी डाली तो तुम्हारी सरकार को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। चलो। माया को कोहनी से पकड़े जॉन कार्लस की फुक चेहरे पे एक कहर आलूद निगाह डालता उसे जंगल से निकाल लाया, घोड़े पे अपने पीछे बिठाया और ईड़ लगा दी। घोड़ा इतना तेज दौड़ रहा था कि उसने बदर के शाने और कमर को मजबूती से थाम रखा था। वो बिल्कुल खामोश घोड़ा दौड़ा रहा था। रास्ता वही था जो गांव से बाहर जाता था। वो वापस गांव नहीं जा रहे थे, मगर उसने एक दफा भी ना पूछा कि उसे किधर लेकर जा रहा है। बस वो बे आवाज रो रही थी। और जब उसकी सिसकियां हिचकियों में बदलने लगी तो उसने घोड़ा रोक दिया और नीचे उतर आया। आओ नीचे आओ, नरमी से कहकर उसने हाथ बढ़ाया। वो इसी तरह सिसकियों से रोती बदर का हाथ थामकर शाले का सहारा लिए सड़क पे नीचे उतर आई। दोनों अतराफ में घना जंगल था। इधर आ जाओ, बदर ने एक हाथ से लगाम थामी, दूसरे से उसका कंधा और अंदर दरख्तों के बीच ले आया। ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक किता खाली था, सूखे पत्ते इधर गिरे थे, शायद कोई दरख्त तूफान से ढह गया था जिसे बाद में महकमे वाले उठा कर ले गए थे। उसका एक फुट तना कटा पड़ा था। उसे लगाम छोड़ दी, घोड़ा इधर उधर गर्दन झुकाए घास में मुंह मारने लगा। वो माया को तसल्ली देता शानों से थामे कटे तने तक लाया और बिठा दिया। आराम से बैठो और मुझे सारी बात बताओ, वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए रोती बिलकती हुई तने पे बैठी थी। और वो पंजों के बल उसके सामने उसके हाथ थामे बैठा था। माया, खुदा रो मुझे बताओ क्या हुआ था, तुम इधर क्यों गई थी, डीसी इधर क्यों। उसकी बात खत्म होने से पहले उसने गीला चेहरा उठाया। बदर, शेखर को जॉन कार्लिस ने कत्ल किया है। क्या कह रही हो, वो हक्का बक्का रह गया। मुझे खोजी उस रोज एक खुरा दिखाने ले गया था जो उस शख्स का था जो शेखर से कच्चे रास्ते पे आखिरी दफा मिला था। मैंने वो खुरा देखा और जब उस खुरे को छोड़ते कदम देखकर सर उठाए तो जॉन कार्लिस जा रहा था। मैंने किसी से जिक्र नहीं किया, बस खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे लगा खोजी को गलत फहमी हुई है, लेकिन उस रात जॉन कार्लिस को कब्रिस्तान में देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि उसका यकीनन इस मामले में हाथ है। वही शेखर के कत्ल में सबसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, वही है जो शेखर से आखिरी दफा मिला था। मैं उस रोज तो खामोश रह गई, मगर आज वो मुझे रास्ते में मिला तो मैंने खुरे का जिक्र कर दिया। वो मुझे एक जरूरी बात बताने के लिए इधर ले आया और फिर वो फिर से रोने लगी। उसने इकरार किया उसने शेखर को मारा है। नहीं, वो सिसकियों के दरमियान बमुश्किल बोल रही थी। मैंने कहा उसने कत्ल किया है तो वो बजाय इनकारी होने के मुझे मारने की धमकियां देने लगा, मेरी गर्दन दबोच ली, मैं चिल्लाने लगी तो तुम आ गए। बदर उस दरिंदे ने शेखर को मार डाला है। शेखर ने उसका क्या बिगाड़ा था, वो तो बहुत मेहरबान था, बहुत अच्छा, बहुत मुखलिस इंसान था। वो उसको क्यों, वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। और बदर के लिए उसको चुप कराना मुश्किल हो रहा था। माया, ये बात काफी पेचीदा है। जॉन कार्लिस का इधर आए 2 रोज ही गुजरे थे जब शेखर का कत्ल हुआ। पार्ट 14 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है।